अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
चरितम् रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकं कमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् సత్య సాయి రామ
जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके पीछे का तात्पर्य क्या होता है। भक्ति हम किसको कहते हैं, क्या वो भक्ति है कि हम भगवान के भजन गाएं, या वो भक्ति है मंत्रों का उच्चारण करें, मंदिरों में जाके मूर्तियों की परिक्रमा करें, तीर्थ स्थानों में जाके गंगा यमुना सरस्वती जैसी महान नदियों में स्नान करें। भक्ति किसको बोला जाएगा? लोग कहते हैं भक्ति योग, भक्ति का रास्ता अपनाओ, ज्ञान योग, ज्ञान का रास्ता अपनाओ, कर्म योग, कर्म का रास्ता अपनाओ। रास्ता कोई भी हो, लक्ष्य एक है, परमात्मा की प्राप्ति। जब हम भक्ति करते हैं, मान लीजिए आप मंदिर में गए हैं, मंदिर में परमात्मा की प्रतिमा के आगे, मूर्ति के आगे खड़े होके हाथ जोड़ के घुटने टेक के माथे को जमीन पर रगड़ कर परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, क्या ये भक्ति है? जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान से क्या कह रहे हैं, या प्रार्थना करते हैं भगवान से क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रार्थना में भी या प्रार्थना के पीछे का जो अभिप्राय है, जो तात्पर्य है, वो परमात्मा से कुछ ना कुछ पाना है। एक व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा मेरे को नौकरी चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा व्यापार, कोई ना कोई इच्छा पीछे होती है। इच्छा की पूर्ति हेतु भक्ति का सहारा लिया। अब देखिए, एक मंदिर के बाहर एक गरीब बंदा बैठा हुआ, भिखारी बैठा हुआ, भीख मांग रहा है। हम कहते हैं भिखारी कहीं का। आप जरा विचार कीजिएगा, केवल विचार कीजिएगा, एक भिखारी बाहर बैठा हुआ है, वो आपको बोलता है भाई साहब बहुत भूख लगी है, दो दिन से खाना नहीं खाया, 100 रुपए दे दो। आप 100 रुपए दे दोगे? आप जेब में हाथ डाल के टटोलोगे कि खुले पैसे कहाँ है, चीज कहाँ पर है, सबसे छोटा सिक्का कौन सा है, वो डाल देंगे। वो फिर हाथ पे लाएगा, नहीं इससे कुछ नहीं होगा, चल चल आगे चल, कहीं और से ले लियो। ऐसा नहीं होता। आपको पता है भीख मांगना कितना मुश्किल काम है, कितना कठिन है? किसी से भीख मांगना कोई आसान काम नहीं है। अपने अहंकार को गिराकर, अपने मान सम्मान को जमीन पर रगड़ते हुए, अपने आप को झुकाकर इंसान भीख मांगता है। हर आदमी के बस की बात नहीं है भीख मांगना। 1000 लोग देख रहे होते हैं, अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कभी आपने सोचा गुरुकुल में क्या होता था? शिष्यों को कहा जाता था भिक्षा मांग के लाओ, मांग के खाओ, ताकि आपका अहंकार जमीन पर आ जाए। जरा सोचिएगा आप, मंदिर के भीतर एक अमीर आदमी जो आलीशान गाड़ी में आया है, जिसका करोड़ों का व्यापार चल रहा होगा, ना जाने कितनी आलीशान मकान में रहता होगा, कितनी कोठियां होंगे, कितने मकान होंगे, कितना बड़ा व्यापार है, कितने हजारों लोग उनके लिए काम कर रहे होंगे, अच्छे परिधान में, अच्छे वस्त्र में, अच्छे आभूषण में, महंगी से महंगी घड़ी पहनी होगी, महंगा से महंगा पेन उनके जेब में होगा, महंगे से महंगा पर्स होगा, सोने के आभूषण होंगे, अंगूठियों में हीरे पन्ना मोती जड़े होंगे, मंदिर में दान भी देता होगा, समाज में उसका काफी नाम होगा। इतना होने के बावजूद भी भगवान के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ के मन ही मन में कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कह रहे भगवान मेरी ये डील हो जाए ना मजा आ जाएगा, अगर डील हो जाए आई विल डू दिस। जरा विचार कीजिएगा, मंदिर के बाहर बैठा और भिखारी भी मांग रहा है और मंदिर के अंदर खड़ा हुआ अमीर आदमी भी मांग रहा है, दोनों मांगते हैं, दोनों भिखारी हैं, लेकिन अमीर व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं झुका रहा कि मन ही मन में कर रहा है, बोल रहा है कौन देख रहा है, किसको क्या पता क्या कर रहा हूं मैं, उससे भला तो भिखारी बाहर है जो अपने अहंकार को तोड़ के मरोड़ के झुका कर आपसे मांग रहे हैं। आप भिखारी को कितना देते हैं, छुट्टा जो खुले पैसे या कम से कम। फिर हम परमात्मा से शिकायत करते हैं, परमात्मा मैंने तो आपसे 1,000 रुपए मांगे थे, आपने मेरे को 10 दिए। सेम बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। वह आपको भगवान मांग के भिखारी सोचते हैं कि आपके अंदर देने की हैसियत है, आप मुझे दे सकते हैं, आप पूरा नहीं दे रहे हैं, आप कम से कम दे रहे हैं। और जब आप भगवान से मांगते हैं तो हमारे अंदर यह अभिलाषा होती है, ये अपेक्षा होती है कि परमात्मा हमारे को 100% देगा जो मांग रहे हैं। तो मूर्ख कौन है, हम खुद। ये भक्ति नहीं है। हाँ आप भगवान से मांग सकते हैं, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, लेकिन इसको भक्ति का नाम नहीं दे सकते। विचार कीजिएगा जरा आप, एक छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है, उसको थोड़ी चोट लगी, रोता हुआ मां को दिखने लग गया, मां ने झटपट लाल को उठा लिया, झाड़ पहुंच कर गीले गालों को सुखा दिया, झाड़ पहुंच कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता पढ़ी थी हमने विद्यालय में, मैं रोई मां काम छोड़कर आई, मैं रोई मां काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुंच कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, रोना हो मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मां को पता है मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है, मां उठा लेगी एकदम से विदाउट सेकंड थॉट, लेकिन बच्चे के मन में उस समय केवल मां के लिए प्रेम है, उसको पता है कि मां मेरी रक्षा करेगी, जो मुझको चाहिए वो देगी। बच्चे को भूख लगी है, मां को देखा रो पड़ा, मां ने तत्काल इंस्टेंटली बच्चे को खाना दे दिया, खाने कुछ ना कुछ खाने को दे दिया। बच्चा कंप्लेन नहीं करता, शिकायत नहीं करता, मुझे कम मिला ज्यादा मिला उसको मालूम है, मेरे मां दे रही है, मां को पता है मुझे क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कितना खिलाना है, कितना मेरे को जरूरत है वो भी मां को मालूम है, कितना मुझे देना चाहिए, कितना मेरे लिए हानिकारक है, कितना कष्टदायक है, कितना मेरे लाभदायक है, मां जानती है, बिकॉज ही ट्रस्ट हिज मदर, अनशेकेबल फेथ इन मदर। अगर हम परमात्मा से कहते तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो हे भगवान आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे बंधु सखा हो, तो फिर वो फेथ, वो विश्वास, वो श्रद्धा कहां चली जाती है जब इच्छा की पूर्ति ना हो तो। भगवान राम लंकापति रावण को मार के माता सीता को लेकर अयोध्या लौटे, उनका राज्य अभिषेक हुआ, अयोध्या के राजा बन गया। किसी ने सुझाव दिया कि हमें जिन लोगों ने हमें सहायता की है भगवान राम की, भगवान राम 14 साल वनवास पे थे, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से दोस्ती हुई, घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए, कितने लोगों ने परमात्मा भगवान राम की सहायता दी, कम से कम उनका हमें धन्यवाद तो बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। आज के सेंस में बोला जाए, आज के तरीके में बोला जाए, हम बोलते हैं कि एप्रिशिएट। हम क्या बोलते हैं, आई विल एप्रिशिएट इट, आई एप्रिशिएट योर हेल्प। हम ये नहीं बोलते आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। ग्रेटफुल बोलने में हमारा सर झुक जाता है ना, हमारा अहंकार नीचे हो जाता है, हम अपने को नीचा कर रहे हैं और दूसरे को ऊपर कर रहे हैं, वो हमारे को कठिन लगता है, इसलिए हमने शब्द बदल दिए, एप्रिशिएट बोल दिया। भगवान राम ने कहा ठीक है चलो, ये जगह बैठ गए। बारी बारी से जो लोग वहां उपस्थित थे, जो राम जी के साथ थे वनवास में, सबको बारी बारी से बुला के उनको सराहना करते हुए उनको कोई ना कोई उपहार देने लग गया। हनुमान जी को कुछ नहीं मिला, हनुमान जी चुपचाप खड़े थे अपना। तो माता सीता के मन में आया, अगर देखा जाए तो हनुमान ने कितनी सहायता करी है। हनुमान ने माता सीता की लंका में जाके खोज करी थी, जो आप रामचरितमानस के सुंदरकांड में 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। माता सीता की खोज करी, लंका को ढूंढ करके जला दिया। उसके बाद जब रावण मारा गया तब भी हनुमान जी माता सीता के पास गया अशोक वाटिका में, वहां जाके उन्हें सूचना दी कि रावण मारा गया माते, ये शुभ मंगल समाचार भी हनुमान जी ने ही दिया था। माता सीता को लगा नहीं, हनुमान जी को तो कोई अच्छा उपहार देना चाहिए। उन्होंने राम जी को इशारा किया, राम जी मुस्कुराए, कहते हैं कुछ नहीं, डोंट वरी, जरूरत नहीं है। ये माता सीता का मन नहीं माना, उन्हें लगा राम कुछ भूल रहे हैं, कितनी गलत बात है, अपने गले से मोतियों का हार निकाला, ना जाने कितना महंगा होगा, अयोध्या की महारानी थी माता सीता, तो गले से मोतियों का हार निकाल कर हनुमान जी को दे दिया, लो हनुमान। हनुमान जी बोलते हैं माते ये क्या है उपहार तुम्हारे लिए, तुमने इतनी सहायता करी ना, कहते ये मेरे किस काम का। वो उसको लेके अपने कान में झनका कर देख रहे हैं, फिर मोतियों को दांत से काटने का प्रयास करने लगे। माता बोली क्या करते हो, इतने महंगे मोतियों की माला तुम उनको दांतों से तोड़ रहे हो, कभी कानों में सुन रहे हो, क्या कर कर रहे हो। बोले मां मैं देख रहा हूं क्या इन मोतियों में से राम की गूंज आ रही है, क्या इनके भीतर राम है, इसलिए मैं काट कर देखने का प्रयास कर रहा था मां। माता सीता बोली पगले क्या तेरे ऐसे राम बसे हुए जैसे बात कर रहे हो। कहते हनुमान जी ने अपने शरीर में से एक रोंगटे में से एक बाल तोड़ के दिया, बाल को सुना गया कान के पास लाके, उसमें से राम राम की गूंज नहीं थी, राम नाम की धुन चल रही थी। उन्होंने आवेश में आके अपने छाती को फाड़ के दिखा दिया, अंदर बैठे थे मेरे प्रभु श्री राम। विचार कीजिएगा, हनुमान जी ने राम जी के साथ जो भी कार्य किया, जितनी सहायता की, कोई चीज का अहंकार नहीं किया, ना उनकी अपेक्षा थी, ना उनको कुछ सोचा था मन में, ना चाहते थे। वह तो केवल प्रेम वश में कर रहे थे, प्रेम के लिए। राम मेरे स्वामी है, राम मेरे ईश्वर है, आई एम ओनली डूइंग दिस फॉर गॉड, गॉड एंड गॉड ओनली। मैं ये केवल परमात्मा के लिए कर रहा हूं, और मैं करने वाला भी कहूं तो परमात्मा मेरे शरीर के द्वारा, मेरे अंगों के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, मेरी भावनाओं के द्वारा करवा रहे हैं। He is the absolute soul doer। करता वो है। और जब आप परमात्मा को सब कुछ दे देते हो, जब आप परमात्मा से कुछ नहीं मांगते तो क्या होता है, विचार कीजिएगा जरा। ऐसे कहानी सुदामा जी की भी तो है ना। भगवान राम, भगवान कृष्ण और सुदामा इकट्ठे बचपन में होते थे गुरुकुल में, अध्ययन के बाद अलग अलग रास्ते चले गए। भगवान कृष्ण तो राजा बन गया द्वारकाधीश, और सुदामा गरीब, पत्नी बोली तुम्हारे दोस्त हमारा मित्र इतना अमीर है, राजा है, कुछ तो सहायता मांगो। हिचकिचाते हुए भुने हुए चावल लेकर हाथ में एक पोटली भर के सुदामा जी भगवान कृष्ण के द्वार पे पहुंचे। द्वारपाल बोले तुम कौन हो? बोले सुदामा हूं, मिलने आया हूं भगवान कृष्ण को। द्वारपाल ने अंदर अंदर मना कर दिया, बोले नहीं कल आना सभा बैठेगी तो। क्या ठीक है जाके मैं संदेश तो दे दो कब जाके। जैसे ही भगवान कृष्ण को संदेश मिला कि द्वार पे सुदामा आया है, मेरे आराध्य देव भगवान कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए वहां पर आए, सर आंखों पे बिठा के उनको अंदर लेकर आए, उनको राज सिंहासन पे बिठाया, अपने हाथों से उनके चरणों को धोया, उनके चरणों को सुखाया कपड़े के साथ, उनका आदर सत्कार किया। कृष्ण भगवान ने ये नहीं सोचा कि मैं एक राजा हूं। सुदामा ने अपना जो पोटली लेके आए थे वो देना भूल गए, हिचकिचा गए, इतना बड़ा राजा मैं छोटी चीज क्या दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण सब जानते थे, उन्होंने पोटली छीन ली, उन पोटली को खोल के बड़े चाव करते आह क्या स्वाद आ रहा है खाने लग गए। सुदामा कुछ नहीं मांग पाए, मांगना चाहते थे, बोलना चाहते थे, बोला नहीं मैं नहीं मांगूंगा, मेरा मित्र है, मुझे इतना प्यार करता है, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। और चुपचाप शाम को वापस घर आ गए। जब वापस अपने गांव में पहुंचे, अपने घर को नहीं पहचान पाए, वहां तो महल खड़ा हुआ था, उनकी पत्नी आभूषणों से घिरी हुई भरी हुई थी, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, समझ नहीं हुआ क्या है। बिन मांगे भगवान कृष्ण ने सब कुछ सुदामा को दे दिया। जब परमात्मा से आप नहीं मांगते हैं तो भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं, अपना स्वरूप दे देते हैं, सब कुछ आपको दे देते हैं। भक्ति भगवान से मांगना नहीं है, भगवान को देना है, प्रेम स्वरूप, परमात्मा को प्रेम से भरी चीज देना है। भगवान केवल प्रेम के भूखे। कहते हैं भगवान राम जब भीलनी के द्वार पे पहुंचे तो भीलनी बोली कहो राम सब्र की डी ढूंढने में अधिक कष्ट नहीं हुआ तुम्हें? राम बोले यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मूल्य है। भीलनी जी कहती है जानते हो राम तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे, ये भी नहीं जानती थी तुम कौन हो, कैसे जीतते हो, क्यों आओगे मेरे पास, बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम जी बोले तभी तो मेरे जन्म के पहले ही आपका पता चल चुका था, ये तय हो चुका था कि राम शबरी के आश्रम में आएगा। एक बात बताऊं राम, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव, दूसरा मरजार भाव। कभी आपने देखा बंदर के बच्चे को? बंदर का बच्चा अपनी माँ को जकड़े रहता है, बंदरिया एक डाली से दूसरी डाली में, एक टहनी से दूसरी टहनी में, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदती रहती है, लेकिन बच्चा गिरता नहीं है। माँ को संभाले जाती है, बच्चे ने पकड़े माँ को, माँ कूद रही है। एक तो भक्ति उस प्रकार की होती है कि आप अपने ईश्वर को पूरी शक्ति के साथ पकड़े रहो, दिन रात उनकी आराधना करो, नहीं फर्क पड़ता जीवन में क्या हो रहा है, कष्ट आए दुख आए, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको विश्वास रखना है कि ये ईश्वर है, ये मेरे परमात्मा है, ही नोज व्हाट इज गुड फॉर मी। लेकिन राम, मैंने ये भाव नहीं अपनाया, मैं तो बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं है, बल्कि निश्चिंत होकर बैठ जाता है कि माँ है ना, वह समय मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच अपने मुंह में से बच्चे के टांग को पकड़ के, बिल्ली के बच्चे को पकड़ के यहां से वहां कूदती रहती है। भक्ति दो प्रकार की है, या तो बन जाओ बंदर के बच्चे के भांति माँ को पकड़े रहो, या बिल्ली के बच्चे के भांति अपने आप को टोटल एब्सोल्यूट सरेंडर कर दो, एब्सोल्यूट सरेंडर, अपने को समर्पित कर दो परमात्मा को, भगवान मैं तेरा हूं, बस तुम मेरी माँ है, दैट्स इट। राम, मैं सोच रही हूं बुराई में भी अच्छाई होती है शायद, ता तुम उत्तर भारत में इतने बड़े राजा हो, कहां मैं एक वन की भिलनी, अगर रावण को ना मारना होता शायद तुम यहां आते भी ना। राम बोले, भ्रम में ना पड़ो मां, राम क्या रावण का वध करने आया है? अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बांध चढ़ा के भी कर सकता है। राम हजारों को चलकर आया इस वन में, केवल तुझसे मिलने आया मां, ताकि हजारों वर्षों बाद भी जब कोई पखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्ला चिल्ला कर उत्तर देगा, इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिलनी मां ने मिलकर बनाया था। जब भी कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाएगा तो काल उसका गला पकड़ कर कहेगा, नहीं, एकमात्र ऐसी सभ्यता है यहाँ, एक राजा का पुत्र वन में प्रतिष्ठा करते एक दरिद्र वनवासिनी भिलनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि सब युगों तक इतिहास लिखा जाए, उसमें अंकित हो जाए कि सत्ता पावर जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वयं पहुंचती है, उसको राम राज्य बोला गया है। राम वन में इसलिए आया है माता, ताकि भविष्य याद रखे कि प्रतीक्षाएं इंतजार करना अवश्य पूरा होता है, राम रावण का मालिक नहीं है केवल मां। राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा आरंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम का काम है, माँ की इच्छा पूरा करना ही राम कहा जाता है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए यह जरूरी है कि देश में पैदी बैठी हुई समर्थक शूर्पनखाओं की नाक काटी जाए, खरदूषण के घमंड को तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम के शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी हुई शबरी के आशीर्वाद से भी जीता जाता है। बेर खाओगे राम? मां बोली, बिना खाए जाऊंगा नहीं मां, बेर मीठे हैं माता। राम बोले, यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं माता, मां बस इतना समझ रहा हूं ये सब अमृत है, केवल अमृत है, कि तुम मुझे इतने प्यार से खिला रही हो वो मेरे लिए अमृत है। भगवान आपका प्रेम चाहते हैं, इसी को परिपूर्ण भक्ति कहा गया है। गरीब हो या अमीर हो, भगवान को केवल प्रेम देना है बिना कुछ मांगे, विदाउट एनी कंडीशन अटैच्ड, अनकंडीशनल लव, उसको बोला गया है प्रेम, लव लव लव, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम।